क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे हैं। पहले ये मानना रहता था लोगों का कि स्टॉक मार्केट से पैसे निकल के क्रिप्टो करेंसी में जाता है, क्रिप्टो करेंसी से निकल के स्टॉक मार्केट में आता है, लेकिन अब एक ऐसा मौका आ गया है जब स्टॉक मार्केट तो नीचे है ही, साथ ही में क्रिप्टो करेंसी का मार्केट भी बहुत बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। आज बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है अनिकेत चौधरी। अगर आपका पर्सनल फाइनेंस मैनेज करना चाहते हैं, आपको म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7058248602 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डायरेक्ट लिंक भी आपको यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों क्रिप्टो करेंसी भी स्टॉक मार्केट के तरह ही नीचे आ रहा है। पिछली बार जब मैंने देखा था तो बिटकॉइन का प्राइस करीबन 14 लाख रुपया, एक बिटकॉइन 14 लाख रुपए का मैंने इंटरनेट पे देखा था, बस कल परसों की बात है। उसके पहले वो 13 लाख को भी छू करके आया था। अभी लगभग 15-16 लाख के रेंज में बिटकॉइन आ गया है, और यही बिटकॉइन कुछ महीनों पहले 40 लाख से भी ऊपर था। तो अब आप सोचेंगे, कुछ महीने पहले 40 लाख, अभी आ गया है 14-13 लाख पे, तो ये क्या चल रहा है? जी हाँ, यही है क्रिप्टो करेंसी। मैं यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइसेस कोट कर रहा हूँ, बाकी भी जो इथीरियम और बाकी भी जो क्रिप्टो कॉइन्स है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गए हैं। इथीरियम जो है वो कभी 2.5 लाख-3 लाख के आसपास था, वो करीबन मैंने जब लास्ट टाइम देखा तो 80,000-75,000 के आसपास इथीरियम भी आ गया था। तो ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है उसका कारण ये है कि मार्केट में से लिक्विडिटी यानि पैसा या फिर कैश आप समझ सकते हैं, ये कम किया जा रहा है आरबीआई या फिर जो फॉरेन बैंक्स हैं जैसे कि फेड है अमेरिका में, वहां पर वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं और मार्केट में से कैश पैसा या फिर लिक्विडिटी जो भी आप कहना चाहे, सभी का मतलब एक ही होता है, इसको कम किया जा रहा है। मतलब जो भी लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते थे क्रिप्टो करेंसी में, जिसके वजह से प्राइस ऊपर जाता था, वो अब नहीं हो रहा है क्योंकि पैसा ही कम किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली लोग भी सोचेंगे, एक सेंटिमेंट बनेगा कि मार्केट में ग्रोथ कम होगी, तो क्रिप्टो करेंसी में भी वही चीज़ लागू होती है, क्योंकि आखिर में इकोनॉमी बनाई जाती है लोगों के द्वारा, है ना। लोग अगर स्पेंड करना कम कर देंगे तो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, लोग अगर कैश अपने पास अपने घरों में अपने अकाउंट्स में रखना शुरू कर देंगे तो इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। और वही चीज़, वही मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो फिर चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, फिर चाहे वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सारे मार्केट्स में सेम अप्लाई होगा, क्योंकि एंड में सब खेल जो है वो तो डिमांड एंड सप्लाई का ही है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है, किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस कम होता है। और क्रिप्टो करेंसी भी कोई एलियन वर्ल्ड से नहीं आया है, क्रिप्टो करेंसी भी यही हमारे बीच ही बना हुआ एसेट क्लास है। हमारे लोग ही हैं, यानी हम ही हैं जो उसको चला रहे हैं, जो उसके प्राइस को ऊपर और नीचे कर रहे हैं। डिमांड और सप्लाई का ही प्रिंसिपल अप्लाई होता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी। भले ही सोचने में और समझने में ये कुछ अजीब सी चीज़ लगती है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी ये सब क्या है, लेकिन एक्चुअली प्रिंसिपल, मेन प्रिंसिपल जो है वो फिर से डिमांड एंड सप्लाई का ही है। तो अगर पैसा कम किया जाएगा मार्केट से, लिक्विडिटी कम की जाएगी, तो ऑब्वियसली डिमांड में भी फर्क पड़ेगा और उसका जो सेलिंग है वो ज़्यादा होगा, और वही यहाँ पर हुआ है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी नीचे आ गया है। दूसरी चीज़ और एक यहाँ पर यह भी है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो साइकिल्स में चलता है। अब साइकिल्स में तो हर एक चीज़ चलती है, है ना। ऊपर कोई चीज़ जाती है, नीचे कोई चीज़ आती है, कोई भी स्टॉक हो या कोई भी इक्विटी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उसका भी एक साइकिल चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की जो ये साइकिल्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। अगर बुलिश साइकिल आती है तो बहुत इम्पल्सिव होता है और बहुत दिन तक चलता है, बेरिश साइकिल आती है तो वो भी काफ़ी इम्पल्सिव होता है और वो भी काफ़ी दिनों तक चलता है। अब इसमें होता ये है कि क्रिप्टो करेंसी क्योंकि अनरेगुलेटेड है, तो कुछ ही लोग, कुछ गिने चुने बड़े लोग जिसको कि वेल्स कहा जाता है, वो लोग क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को चलाते थे पहले। अभी कुछ हद तक कम हुआ है, ये रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफ़ी हद तक उनके हाथ में डोमिनेंस होता है। तो अगर मान लीजिए कुछ 15-20 बड़े लोग जिनका कि बड़ा होल्डिंग है मान लीजिए बिटकॉइन में, अगर उन्होंने सोचा कि चलो आज बिटकॉइन में सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे लाते हैं, तो फिर वो वैसा अगर करते हैं तो प्राइस नीचे आता है, क्योंकि अनरेगुलेटेड है तो ये सारी चीज़ें वो लोग कर सकते हैं। अभी धीरे धीरे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उसकी वजह से उनका इम्पैक्ट जो है कुछ हद तक कम हो रहा है, लेकिन स्टिल डोमिनेंस उनका ही है। तो जैसे जैसे प्राइस को ऊपर ढकेला गया, उसके बाद में धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग हुई, उसके बाद फिर से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है, और जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ये जो क्रिप्टो करेंसी के FIIs हम कह सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको हम नाम दे सकते हैं, ये लोग फिर सेलिंग चालू करते हैं, और ये सेलिंग एक ही बार में नहीं करते हैं, ये धीरे 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 सेलिंग करते हैं। जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है फिर से ये सेलिंग करते हैं, फिर से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ता है फिर से ये लोग सेलिंग करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को भी मैनिपुलेट किया जाता है, और यही हो रहा है। तो जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, द सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑफ द क्रिप्टोकरेंसी मार्केट, इनका प्रॉफिट बुकिंग शुरू होता है, तो वैसे वैसे धीरे धीरे रिटेल पार्टिसिपेशन से पैसा निकाला जाता है और उनका प्रॉफिट होता है। तो इस प्रकार से ये क्रिप्टोकरेंसी का फिर से कोई नई चीज़ नहीं, जैसे मैंने कहा डिमांड एंड सप्लाई की ही बात है यहाँ पर भी, और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी ये है कि क्या आपने क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लेनी चाहिए? अगर आपने पहले से बाय करके रखा है तो आपने क्या करना चाहिए? देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि काफ़ी रिस्की है, काफ़ी अनरेगुलेटेड है, उसका कुछ रेगुलेशन है नहीं, इंडिया में तो है ही नहीं। ऐसी चीज़ में अगर आपने शुरुआत में कुछ पैसा निवेश किया है तो डेफिनेटली आपने तो यही सोच कर किया होगा कि ये जो पैसा है ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर छोड़ना है। शॉर्ट टर्म के लिए ऑब्वियसली अगर आपने ट्रेडिंग के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में एंट्री ली है तो फिर तो अभी तक आपने बाहर हो जाना चाहिए था, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर ऐसा अगर आपने सोचा होगा कि चलो आज मैं बिटकॉइन ले लेता हूँ, कुछ 30 लाख का है, 25 लाख का है, कल को चल के अगर 1 करोड़ होगा बिटकॉइन तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, अगर नहीं होगा और अगर क्रिप्टो करेंसी का मार्केट डूब गया या ये सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर मेरे ये जो इतने पैसे हैं ये भी डूब जाएंगे। और ऑब्वियसली अगर आपने ये सोचा होगा कि यहाँ इतने पैसे अगर मेरे डूब जाते हैं तो ऑब्वियसली मुझे दुख होगा, 1 रुपया भी मेरा का नुकसान होता है तो मुझे दुख होता है, लेकिन ठीक है मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैं इसमें समझूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है इतने पैसे की मैं रिस्क ले सकता हूँ, इतने पैसे चले जाएंगे ठीक है कोई बात नहीं, बाकी मेरा इक्विटी का पोर्टफोलियो, बाकी मेरा ये सब चीज़ें चल रहा है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए और रियल फाइनेंशियल प्लानिंग है। ये जो है ये एक आप मान सकते हैं एक तुक्का है, एक रिस्क है। इस प्रकार से अगर आपने सोचा है तो फिर अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब जितने आपकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा पैसा कहीं से जमा किया, या फिर म्यूचुअल फंड्स में से पैसा निकाला, विड्रॉ किया और फिर आपने क्रिप्टो करेंसी में डाला, स्टॉक से निकाला क्रिप्टो करेंसी में डाला, कहीं से लोन ले लिया, FD तोड़वा दी, सैलरी में से बहुत सारा पैसा आपने क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया, तो आपने मूल स्वरूप में ही गलत चीज़ की है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ज़्यादा पैसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ क्रिप्टो करेंसीज में, लेकिन रिस्क को समझ के करता हूँ और इस बात की तैयारी रखता हूँ कि इतने पैसे मानो अगर कल कुछ मिले ही ना मुझे वापस तो मुझे दुख तो होगा, लेकिन ठीक है मुझे इतना बड़ा डेंट, इतना बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा मेरे लिए, और जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है उसको समझ के मैंने इन्वेस्ट किया। इस प्रकार से मैं तो इन्वेस्ट करता हूँ और मैं अभी और बाय करते रहता हूँ, जैसे जैसे मार्केट नीचे आता है मैं बाय करते रहता हूँ। मैं मेरे पुराने इन्वेस्टमेंट्स को जाके देखता नहीं 10 बार, मैंने एक बार जो ले लिया मैं उसको भूल गया हूँ, वो वॉलेट में पड़े हैं। इथीरियम जो है उसको मैंने स्टेकिंग पे भी लगा दिया है, स्टेकिंग से भी कुछ 9-10% सालाना का रिटर्न आता है। स्टेकिंग कैसे करना है, क्या है स्टेकिंग, इसके बारे में काफ़ी सारे एपिसोड्स भी किए हैं प्रीवियसली हमने, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपका व्यू है, आप अगर एक लॉन्ग टर्म के लिए एक रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देने की क्षमता रखता है, तो फिर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी का टाइम तो अच्छा टाइम है, जैसे मैंने कहा 15-16 लाख का बिटकॉइन लग रहा है, क्या नीचे आ सकता है क्या ऊपर जा सकता है इसके बारे में ज़्यादा ना सोचे, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें और अगर नीचे जाएगा 10 लाख के ऊपर में तो और थोड़ा इन्वेस्ट करें। वैसे तो मुझे लगता है कि 12 लाख का जो लेवल है, जो पिछले बार का एक रेजिस्टेंस लेवल है 12-13 लाख का, उस लेवल तक आएगा प्राइस, उससे नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब नामुमकिन तो ऑब्वियसली नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है कि 12 लाख से भी नीचे चले जाए। अगर 12 लाख से नीचे चले जाएगा तो फिर तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि पिछली साइकिल्स का जो टॉप है उसके भी नीचे आ जाएगा प्राइस। ठीक है, तो रिस्क को समझ के इन्वेस्ट आप कीजिए। एक बहुत ही अच्छा एसेट क्लास तो नहीं, लेकिन हाँ एक उभरता हुआ एसेट क्लास है जिसका फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आखिर तक सुनने के लिए इस पॉडकास्ट को। हमारा इंग्लिश का पॉडकास्ट भी चेक ज़रूर कीजिए। इंग्लिश का पॉडकास्ट इंडिया में सारे फाइनेंस पॉडकास्ट में रैंक नंबर 12 पे है, जिसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के भी पॉडकास्ट हैं, उसको भी चेक ज़रूर कीजिए। और फिन आज़ाद के ऐप के ऊपर में आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा। अब बिटकॉइन की बात करें, इक्विटी की बात करें, तो आपको चार्ट्स अगर समझना है, जानना है कि हाँ कहाँ तक प्राइस आ सकता है, कहाँ से ऊपर जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो है अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो आप आराम से घर बैठे ही खुद ही कर पाएंगे। किसी के टिप्स कॉल्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिन आज़ाद के ऐप के ऊपर जाइए, वहाँ पर यह टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसको अगर आप करते हैं तो आप खुद ही खुद के डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आखिर तक सुनने के लिए, कीमती समय देने के लिए आपका। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट फॉलो जरूर कीजिएगा, जिससे हेल्प होती है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए। थैंक यू एंड आई विल बी सीइंग यू अगेन।